हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 5। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रै श्रवसे नमो नमः। किरात होणा द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देव ये स्तवे वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 5। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरा यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उन विरक्तों की बात बता रहे हैं कि जो ये जान गए हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, तो उसको किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अत्यंत ही सुंदर रीति से उन्होंने बताया कि जीना तो केवल देह निर्वाह के लिए अर्थ का संग्रह करना है, मतलब ये जो भौतिक वस्तु हैं उनके संग्रह के लिए नहीं जीना है। कुछ लोग बोलते ना, खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो, तो खाने के लिए नहीं जीना है बल्कि जी जाए बस इतना खाना है। खाना मतलब जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो केवल इतनी ही स्वीकार करनी है कि तुम अपने इस शरीर को इतना वेल रख सको कि उसके द्वारा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सको। उन्होंने बताया श्लोक नंबर 3 में, अत कवि नाम सुयावदत स्यादा प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाण। अतः कवि नामसु, जो कवि है विवेकी व्यक्ति है, उनको क्या करना चाहिए, नामसु यावद अर्थ, जो अर्थ है भौतिक वस्तु है वो सिर्फ नाम के मात्र, मतलब इतनी ग्रहण करनी चाहिए कि जी सके बस। और स्यादा प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, उसमें भी सावधान रहना चाहिए, अपनी बुद्धि को इतना निश्चय बताना चाहिए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए जो ये निर्णय कर सके, ये जिसको ये पक्का विश्वास हो कि मेरा कल्याण भौतिक वस्तुओं के द्वारा नहीं होगा, ये भौतिक वस्तुएं तो मेरे देह निर्वाह के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, बाकी मेरा कल्याण तो क्यों है, भगवत प्राप्ति करने के लिए। इसलिए सिद्धि यथार्थे नयते तयत्र, यदि अपने आप कोई वस्तु मिल रही है सिद्ध हो रहा है काम, तो उसके लिए न यते तत्र परिश्रम, उसके लिए अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, तत्र समीक्षमाण, जो वास्तव में व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं, जो जानते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, तो उनको इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए केवल अपने जीवन को खत्म नहीं करना चाहिए, बस जो बिना परिश्रम के मिल जाए उसी पे ही जीना चाहिए। तो सोचा जाए कि बिना परिश्रम के तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर मनुष्य कैसे जिएगा, निर्वाह कैसे होगा। तो वे कहते हैं कि प्रकृति की रचना भगवान ने इस तरह की है कि बगैर किसी स्ट्रगल के आप आसानी से जी सकते हो। भौतिक वस्तुओं के लिए यदि हम पूरे जीवन स्ट्रगल ना भी करें तो भी अपने जीवन के लिए जीना भगवान ने इतना सरल बना दिया। कैसे, सत्यम क्षितौ किम कशिपो प्रयास है, यदि सोने के लिए पृथ्वी है तो फिर नरम नरम गद्दों के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। बाहो स्वसिद्धि ह्युपभर्हणय किम, यदि रात को सोने के लिए तुम अपने दोनों बाहों को मिलाकर तकिए की तरह रख के उसके ऊपर सो सकते हो, तो नरम नरम तकियों को खरीदने के लिए इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है। सत्यं जलौकिम पुरुधान्न पात्रा, आपकी अंजलि, भगवान ने दो हाथ ऐसे दिए हैं कि उसके द्वारा आप पकड़ के कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो, तो फिर इतने सारे बर्तनों के लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। और ये सब ना बिसाइए तो तन ढांपने के लिए मनुष्य को वस्त्रों की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। तो वे कहते हैं दिग्वल कला दो सती किम दुकूल, अपने कपड़ों की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना समय अपने कैसे किस तरह के नए नए ड्रेसेस पहनो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। यदि दरख्तों की छाल भी पहन लोगे ना तो भी तुम्हारे शरीर तो ढक जाएगा इससे, इसके लिए इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है कि जीवन में कम से कम संग्रह करो और ज्यादा से ज्यादा इस बात की चिंता करो कि समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक समय भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए, अधिक से अधिक समय भगवान के भजन के लिए स्पेशल होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन कोई कुत्तों की तरह खा पीकर मरने के लिए नहीं मिला है बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। एक एक क्षण हमारा वेस्ट हो रहा है भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के प्रयास में। तो मानो कोई बोले कि भाई ये तो सुखदेव गोस्वामी अपने बता रहे हैं कि वो तो दरख्तों की छाल पहनकर ही जी लेंगे और है ना तकिए के बगैर और गद्दे के बगैर जी लेंगे, तो कुछ तो है ना मनुष्य जीवन के निर्वाह के लिए वस्तुओं चाहिए होती हैं, तो वो कैसे मिलेंगी, उसको किस तरह से वो प्राप्त करेगा। ऐसे थोड़ी ना दरख्तों की छाल लेकर नंगा घूमता फिरेगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते जो विरक्त होते हैं, वास्तव में जो विरक्त है उसके लिए स्टैंडर्ड यही है कि जो भी भगवान की कृपा से मिल रहा है वो खा ले, पी ले, पहन ले, किसी भी घर में रह दे और दिन रात भगवान का भजन करे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही इस मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ है। तो वे कहते हैं श्लोक नंबर 5 में, मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भीक्षां, नैवाङ्ग्रिपापरभृत सरितोऽप्यशुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्मात् भजन्ति कवयो दनुधुर्मधाना, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशति भीक्षां, नैवाङ्ग्रिपा परभृत सरितोऽप्यशुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्मात् भजन्ति कवयो दनुदुर्मदान्धा, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशति भीक्षां, नैवाङ्ग्रिपा परभृत सरितोऽप्यशुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्ना, कस्मात् भजन्ति कवयो दनुदुर्मदाना, कस्मात् भजन्ति कवयो दनुदुर्मदान्धा। तो अगर कोई ये पूछे कि भाई दरख्तों की छाल पहनकर भला कोई कैसे जी सकता है, तो वे कहते हैं ठीक है, चीराणि किम पथि न संति, चीराणि किम, रास्ते में क्या फटे पुराने कपड़े कहीं नहीं मिल जाते, जरूरी है कि हम लोग इतने अच्छे हाई फाई ड्रेसेस खरीदें, इसके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा करें, ऐसी एम्ब्रॉयडरी हो, ऐसा ना टेलर होना चाहिए, इस तरह से कपड़े बनाने चाहिए, ऐसा मेरा लुक आना चाहिए। वो शरीर जो कल क्षण भंगुर है, कल जला कर खाक कर दिया जाएगा, उस शरीर को सजाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो जो विरक्त होते हैं, जो विरक्त हो गए भौतिक जगत से, उनको तो बिल्कुल भी इस चीज की परवाह करनी नहीं चाहिए। पहले जमाने में क्या होता था कि जो धनी लोग होते थे, वो जो भी हमारे कपड़े उनके मतलब पहले पहनते थे, फिर दूसरे कपड़े वो खरीदते थे, तो पहले वाले कपड़े क्या करते थे, वृक्षों में और रास्तों में इसे रख देते थे। तो जो विरक्त लोग होते थे वो वहां से उठाकर पहन सकते थे, मतलब उनको तो परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं थी ना। तो ये कहते हैं चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षा, के क्या रास्ते में पड़े हुए फटे पुराने कपड़े उठाकर भी तुम यदि अपने शरीर को ढक ले ढक सकते हो तो इतनी क्यों मेहनत कर रहे हो। और अगर देखा जाए तो आज अगर रास्ते में फटे हुए कपड़े नहीं मिलते तो प्लास्टिक तो मिलता है। तो यहाँ राधा गोविंद महाराज बोलते हैं शरीर ही ढकना है तो कुछ भी उठा के ढक लो, इसके लिए इतनी मेहनत करने के लिए कि बस अपने जीवन का लक्ष्य यही बना दिया आजकल लोगों ने कि मैं कैसे इतने सुंदर वस्त्र बनाऊं कि सब जो मुझे देखे वो देखते ही रह जाएं, बस सब मुझे ही कमेंट्स दें कि क्या लग रही हो। वास्तव में तारीफ उस कपड़े की हो रही है, क्योंकि तुम्हारी तारीफ यदि होती तो उस ड्रेस के बगैर होती, मतलब आप सिंपल ड्रेस पहनते तब भी आपको कहा जाता कि आप इतनी सुंदर, लेकिन जब अच्छा हाईफाई ड्रेस पहन के जाते ना तब बोलते आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, कितने अच्छे कपड़े पहने, मतलब वो तारीफ किसकी हो रही है, कपड़े की हो रही है। मनुष्य को अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि वो यदि सिंपल ड्रेस भी पहन के जाए तो भी उसकी तारीफ हो, तो भी लोग उसकी तारीफ करें, और तब वास्तव में उसकी तारीफ हो रही है, वरना तो वो ड्रेसेस की तारीफ हो रही है। तो बोल रहे हैं कि शरीर को ढांपने के लिए क्या करना चाहिए, चीराणी किम पथि न संति, रास्ते में पड़े हुए फटे पुराने कपड़ों से भी तुम अपने शरीर को ढक सकते हो, तो इन वस्त्रों के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो मानो कोई पूछे कि ठीक है कपड़ों के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन पापी पेट का सवाल है, खाने के लिए तो कुछ न कुछ चाहिए होगा ना, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो वे कहते हैं कि दिशंति भिक्षा नैवांग्रिपा परभृता, बेशक जीव को जीने के लिए भोजन तो चाहिए, परंतु परभृता, परभृता का मतलब होता है जो दूसरों को जीवन देने के लिए ही जीते हैं, अर्थात कौन, नैवांग्रिपा, जो वृक्ष हैं, क्या उन्होंने उन्होंने क्या अब फल देना बंद कर दिए हैं, वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया जो केवल दूसरों के लिए जीते हैं, बस कुछ भी तो खाना ही है ना। तो फिर उन वृक्षों के जिनका जीवन ही दूसरों को जीवन दान देने के लिए है, उसमें से कोई भी फल लेकर हम खा सकते हैं, मतलब आज तक कोई ऐसा, ये बताया गया परभृता, आज तक कोई ऐसा वृक्ष तो नहीं बना है जिसने सारे अपने फल खुद ही खा लिए हों। तो राह चलते हुए कोई वृक्ष आ जाए उसमें से एक फल उठा के खा लिया करो, इसके लिए इतनी सारी है ना डिशेस बनाना, आज की क्या रेसिपी है, क्या मेन्यू है, ये बनाओ वो बनाओ, ये खिलाओ, ऐसा मीठा होना चाहिए, इतने आइटम्स होने चाहिए, इतनी सब्जियां होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, पापड़ होना चाहिए, डिजर्ट्स होने चाहिए, सारी चीजें, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जियो तो इतना सिंपल जियो कि थोड़ा सा खाकर बस अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सको। तो वे कहते हैं चीराणि किं पथि न संति दिशन्ति भिक्षा नैवांग्रिपा परभृत सरितोऽप्यशुष्य। तो फिर वो कहते हैं ठीक है खा तो कुछ भी लेंगे, किसी से भिक्षा लेकर या फिर ना वृक्षों के फल फूल खाकर जी लेंगे, लेकिन पानी तो पीना पड़ेगा ना, पिएगा तो सही ना कोई ना कोई। तो वे कहते हैं सरितोऽप्यशुष्यन्, क्या नदियां सूख गई हैं जो बिस्लरी की या फिर ना नेस्ले की बोतल खरीदने के लिए 40 रुपए, एक छोटी सी बोतल लेते हो आप 40
25 रुपए की मिलती है तो फिर इतना खर्चा करने के लिए जरूरत नहीं है। नदियां भगवान ने बनाई हैं, बस उनका जल पीकर यहाँ पे ना आनंदित हो जाओ और भगवान का भजन करो। तो वे कहते हैं ठीक है, खा पी तो लेंगे, लेकिन रहेंगे किधर? रहने के लिए तो घर चाहिए ना, तो फिर कहाँ रहेंगे? तो वे कहते हैं रुद्दा गुहा के, क्या पर्वतों की सारी गुफाएं बंद हो गई हैं? पर्वतों में जाकर अंदर गुफाएं, जिस तरह से एक घर होता है वैसी बनी हुई होती है, अंदर जाके ऐसी गुफाओं में रहना चाहिए। उसके लिए ना इतने बड़े बड़े घर बनाने के लिए ये बेडरूम होना चाहिए, ये ड्राइंग रूम इतना बड़ा होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। आजकल तो बाथरूम में सबसे ज्यादा ना खर्चा कराते, ऐसा बाथरूम होना चाहिए, उसके अंदर ग्लास लगा होना चाहिए, ऐसा वॉश बेसन लगाना चाहिए, ऐसे अटैच लगाने चाहिए। इतना ज्यादा अपने ना घर को सजाने की क्या जरूरत है? आज नहीं तो घर तो कल छोड़ के ही जाना है ना, तो फिर किसी गुफा में जाकर रह लो, भगवान का भजन करो। तो फिर कहते हैं कि गुफा में अगर हम लोग रहेंगे तो वहां पर तो कितने सारे है ना पशु होते हैं, शेर होते हैं, सांप होते हैं, वो तो हमें खा जाएंगे ना, उन गुफा में कैसे रहें? तो फिर इतना सुंदर उत्तर देते हैं, वो बोलते हैं कि अजितोवती नो प्रसन्नान, जो भगवान सब शरणागतों की रक्षा करते थे, क्या उन्होंने अभी अपने भक्तों की रक्षा करना बंद कर दिया है? क्या अब वो भगवान अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे? जो भगवान सारे संसार की रक्षा कर रहे हैं, क्या वो अपने भक्तों को भूखा मरने देंगे? क्या उनके ऊपर विश्वास खत्म हो गया है? क्या भगवान की कृपा बंद हो गई है, या भगवान की कृपा का समुद्र जो है वो सूख गया है, अभी भगवान ने कृपा करना बंद कर दिया है क्या? इस संसार में कोई यदि किसी व्यक्ति का भी, इस संसार में भी हम देखते हैं कि यदि कोई किसी की नौकरी करता है सिंसियरिटी के साथ, अगर वो सर्वेंट सिंसियर होता है और मालिक भी अपने नौकर के प्रति यदि सिंसियर होता है, तो नौकर के ऊपर यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है या उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है, तो ये उसके मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उसको है ना वो वस्तु प्रोवाइड करे। कभी उसको है ना जैसे सर्दियां हो, कोई ड्रेस कोई चाहिए होता है, या कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, या कुछ भी उसको कोई बीमारी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो ये अगर वो मालिक दयावान है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने नौकर का अपने सर्वेंट का ख्याल रखे। तो इस साधारण संसार में भी यदि हम देखते हैं तो मालिक जो होते हैं वो अपने सिंसियर नौकर की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, है ना। तो क्या हमें भगवान के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है कि यदि हम भगवान की सिंसियरिटी के साथ सेवा करेंगे तो वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे? मतलब भगवान को हम इतना गिरा हुआ समझते हैं कि वो हम भगवान की सेवा करते रहेंगे और हमें तड़पना पड़ेगा या पछताना पड़ेगा या फिर अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा? कृष्ण है यहाँ पर, वे कहते हैं ये सबके लिए है। ये जो यहाँ पर कह रहे हैं किम अजितो वतिनो प्रसन्ना, किम अजितो, क्या अजित भगवान जो कभी भी किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, जो अच्युत हैं, अवति यानी कि सुरक्षा प्रदान, नो उपसन्नान यानी उनको जो शरणागत हैं उनके, क्या उनको भगवान अपनी सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे? क्या भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करना बंद कर दिया है? जो आपको चिंता हो रही है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो फिर मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, भगवान अवश्य सहायता करेंगे। अगर भगवान सबकी सहायता करते ही हैं तो आगे कहते हैं जब भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कस्मात् भजन्ति कवयो धनु दुर्मदान्धान, कस्मात् भजन्ति, फिर क्यों भजन्ति? कस्मात् मतलब किस लिए, भजन्ति मतलब चापलूसी करते हैं, कवयो जो वास्तव में कवि हैं, विद्वान हैं, वो फिर उनकी चापलूसी क्यों करते हैं? धनु दुर्मदान्धान, जो अपने धन की मद से अंधे हो गए हैं, जो अत्यंत ही मतवालों की तरह हैं, ऐसे लोगों के पीछे भागने की क्या जरूरत है? भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं, क्या अजित भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करना छोड़ दी है? भगवान पर विश्वास नहीं है इसीलिए तो फिर वो अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुवाद देखिए, क्या सड़कों पर चित्रे नहीं पड़े रहते? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या सबसे ऊपर, क्या अब सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से हमें समझाएंगे कि वास्तव में एक विरक्त व्यक्ति जो कि भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान दिए बिना समाज के खर्च पर ही जीवित रहता है। सन्यास आश्रम समाजक को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, ना कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। यहाँ पर विरक्त जो सन्यास आश्रम प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपने अपना जीवन अब दूसरों के कल्याण के लिए ही न्यौछावर करना है। ऐसा नहीं कि केवल गृहस्थों के धन पर आश्रित रहने के लिए आपने अपने ये सन्यास आश्रम को ग्रहण किया है। सन्यास आश्रम तो समाज को कल्याण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है, इसलिए विपरीत प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के वास्तविक लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सु अवसर होता है। मतलब जो वास्तविक सन्यासी हैं, यदि वो किसी गृहस्थी से लेते हैं तो उनको गृहस्थियों को सु अवसर प्राप्त हो रहा है शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए। तो आगे कहते हैं, सनातन धर्म प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य है और शास्त्रों का आदेश है कि सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे उन्हें भोजन वस्त्र इत्यादि प्रदान करें। इसलिए छद्म सन्यासियों को श्रद्धालु ग्रस्थों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। सन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह मनुष्यों के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करें जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, सन्यासियों का बहुत कर्तव्य है कि लोगों के लिए कुछ लिटरेचर, कुछ ऐसा शास्त्र, कुछ ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे लोगों का कल्याण हो, उनको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हो। खाली सन्यास लेकर लोगों के घरों में जाकर भीख मांग कर खाने के लिए थोड़ी ना सन्यास आश्रम मिला है। अब श्रीला प्रभुपाद जी हमारे जो शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं या फिर है ना षड गोस्वामी, उनके विषय में बता रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के सन्यास काल में अन्य कर्तव्यों में सर्व प्रधान कर्तव्य था वृंदावन के सेवा कुंज में पारस्परिक विद्वत्तापूर्ण गोष्ठी। सबसे पहले वो क्या करते थे, ऐसी बातें मतलब ऐसा प्रचार करते थे, उनका मेन कार्य यही होता था कि प्रचार करना। और इस स्थान पर राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्रीला जीव गोस्वामी ने की थी तथा श्रीला रूप गोस्वामी एवं श्रीला जीव गोस्वामी की समाधियां भी यहीं पर स्थित हैं, राधा दामोदर मंदिर में, जहां पर श्रीला रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की समाधियां भी हैं। तो वो वहाँ पर उन्होंने जगजीव गोस्वामी ने ये मंदिर का भी स्थापना की थी और वहाँ पर बहुत बहुत प्रचार किया था। वे सारे मानव समाज के लाभ हेतु दिव्य महत्ता वाला प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए। बहुत सारे उन्होंने शास्त्र छोड़े, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और इतने सारे शास्त्र। इसी प्रकार यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, समस्त आचार्यों ने जिन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाया, ना कि सुखपूर्वक गैर जिम्मेदार जीवन व्यतीत करके अन्यों के ऊपर भार रूप बनकर रहना। उनका संन्यास आश्रम स्वीकार करने का एक ही लाभ है कि जो दूसरे लोग हैं जो अभी तक कृष्ण को नहीं समझ पाए हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए हैं, ऐसे मानव समाज को लाभ पहुंचाना, ना कि उन्हीं के ऊपर आश्रित रहकर उनके लिए भार बन जाना। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि भोजन के लिए ग्रस्तों के यहाँ ना जाए, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा ग्रस्तों से भोजन की भीख मांगना इस सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है। आगे श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे, वे कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने यह चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी है जो अपनी आर्थिक समस्या हल करने के लिए इस प्रवृत्ति को अपमानित अपनाते हैं। खाली वो सोचते हैं कि भाई सन्यास ले लेंगे तो खाना पीना मुफ्त में मिल जाएगा, इसलिए सन्यास लेते हैं। कलयुग में ऐसे सन्यासियों की हुलता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते, बहुत सारे ऐसे ही सन्यासी मिलेंगे। जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थितिवश सन्यासी बन जाता है तो उसमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर सन्यास में संसार में सर्वत्र समस्त जीवों के पालन करता है, तो भला वे क्यों कर अपने उस शरणागत की उपेक्षा करेंगे जो शत प्रतिशत उसकी सेवा में लगा रहता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर मिसाल दे रहे हैं कि एक सामान्य मालिक भी अपने नौकर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है तो फिर सर्वशक्तिमान ईश्वरीयवान परमेश्वर अपने पूर्ण शरणागत जीव के जीवन की आवश्यकताओं की ना जाने कितनी परवाह करते होंगे। सामान्य नियम यह है कि सन्यासी भक्त किसी से मांगे बिना एक छोटा सा साधारण कोपिन धारण करे, वह इसे सड़क में पड़े चित्रों से प्राप्त कर लेता है। जब वह भूखा हो तो किसी उदार वृक्ष के पास जाए जो उसे फल देगा, और जब उसे प्यास लगे तो वह भेती नदियों से जल पी ले। उसे आरामदेह घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए कि पर्वत की गुफा खोज ले और जंगली पशुओं से भयभीत न हो। अत्यंत ही सुंदर बात है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, उसे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे सबों के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान व्याघ्रों तथा अन्य जंगली जानवरों को आदेश दे सकते हैं कि वे उनके भक्त को परेशान ना करें। यहाँ हम देखते हैं इस कलयुग में बहुत सारे लोग सन्यासी हो जाते हैं, फिर भी बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं। ऐसे आश्रम खोलते हैं, वहाँ पर संसार की सारी सुविधाएं होनी चाहिए, एसी होना चाहिए, ऐसा बंगलो जैसा आश्रम होना चाहिए। इस तरह से वो जीते हैं जैसे बहुत ही कोई अय्याश व्यक्तियों की जिंदगी होती है। चार लोग उनके पाँव दबा रहे होते हैं, चार लोग उनके हाथ दबा रहे होते हैं, उनकी पसंद के प्रसाद बनते हैं। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के वाक्य हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, क्या जरूरत है कस्मात भजंती कवयो धनुर्मदांधा। ऐसे जब प्रत्येक व्यक्ति और पूरी प्रकृति भगवान के इशारे पर चलती है तो क्या भगवान के आदेश का पालन नहीं करेंगे वो। इतना सुंदर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य के महान भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहा करते थे और संयोग वश एक बहुत बड़ा विषधर सर्प भी उसी गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास का कोई प्रशंसक जो नित्य ही उनको मिलने के लिए जाता था, सर्प से भयभीत था और उसने यह सलाह दी कि ठाकुर उस स्थान को छोड़ दें। चूंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे और वे नियमित रूप से उस गुफा में आते थे। अब ठाकुर हरिदास को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें पता था भगवान उनकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन क्योंकि वहां पर बहुत सारे भक्त आते थे कीर्तन करने के लिए या नाम सुनने के लिए, तो वो बहुत भयभीत होते थे। तो उसने उनको बोला कि आप ये वाला स्थान छोड़ दो। अतीब ठाकुर हरिदास ने उनका हित देखकर प्रस्ताव मान लिया, किंतु ज्यों ही ऐसा तय हुआ तो सांप उसका गुफा की बेल से बाहर निकल आया और सबों की उपस्थिति में उसने उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। सांप के हृदय में वास करने वाले भगवान के आदेश से उसने हरिदास को वरीयता प्रदान करते हुए उस स्थान को छोड़ने का और उन्हें विचलित ना करने का निश्चय किया। अतएव यह ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता है कि भगवान किस प्रकार ठाकुर हरिदास जैसे प्रामाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य को प्रारंभ से ही सभी परिस्थितियों में भगवान की सुरक्षा पर पूरी तरह से निर्भर रहना सीखना होता है। संन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया गया है जो पूर्ण रूप से सिद्ध तथा पवित्र हो। श्रीमद् भगवद गीता 16.5 में भी इस अवस्था का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में हुआ है। मनुष्य को दैवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी वैकल्पिक संपत्ति आसुरी संपत्ति अर्थात भौतिक संपत्ति उसे बुरी तरह से पराजित कर देगी और उसे बाध्य होकर भौतिक संसार के विभिन्न कष्टों के बंधन में पड़ना होगा। सन्यासी को सदा अकेला रहना चाहिए और उसे निर्भीक होना चाहिए। मनुष्य को कभी अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए, यद्यपि वह कभी अकेला होता नहीं। भगवान सबों के हृदय में वास करते हैं और जब तक मनुष्य मान्य विधि द्वारा शुद्ध नहीं हो लेता तब तक उसे अकेलेपन का अनुभव होता रहेगा। किंतु संन्यास आश्रम वाले मनुष्य को इस आश्रम की परिक्रिया से शुद्ध होना चाहिए। इस तरह उसे सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा और उसे किसी का भय नहीं रहेगा, भले ही उसके साथ कोई ना रहे। प्रत्येक व्यक्ति निर्भय तथा ईमानदार बन सकता है यदि वह प्रत्येक आश्रम में निश्चित कर्तव्य का पालन करे। श्री रूपा जी बहुत सुंदर रीति से बता रहे हैं कि यदि हम अपने हर एक आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में कर्तव्य क्या है, शास्त्रों का अध्ययन करना, ग्रस्त आश्रम में कर्तव्य क्या है, संतों का, शुद्ध भक्तों का आदर करना, उन्हें दान देना, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में अपनी साधना को दृढ़ करना, तो यदि हम प्रत्येक आश्रम में अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे, फिर संन्यास आश्रम में आने तक हमारे सारे भय दूर हो जाएंगे, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मनुष्य वैदिक आदर्शों का श्रद्धापूर्वक श्रवण करके तथा भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्यों में स्थिर हो सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो ये अत्यंत ही सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में संन्यास आश्रम के बारे में बताया है कि संन्यास आश्रम को किस तरह से रहना चाहिए जो संन्यास आश्रम को स्वीकार करता है। और यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने अंतिम लाइन में बताया कस्मात् भजन्ति कवयो धनुर्मदान्धान, जो धन के नशे में अंधे होते हैं। तो जो विद्वान लोग होते हैं जो संन्यास आश्रम को स्वीकार करते हैं वो क्यों, वो कहते हैं हमें आश्चर्य होता है कि विद्वान लोग क्यों धनियों के पीछे चलते हैं और ऐसे लोगों से धन की कामना करते हैं जो धन की मद में अंधे हैं, जो वैष्णवों को देखते ही धिक्कारने लगते हैं। आज हम देखते हैं कि जो धनी लोग होते हैं वो दान देना नहीं चाहते, वो बस ये सोचते हैं कि ये धन केवल हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही लगाना है। तो कई धनी तो ऐसे हैं जिनका पानी समुद्र की तरह खारा होता है, यानी कि जिनका जो धन होता है वो कोई भी नहीं यूज कर सकता, जैसे समुद्र का पानी कोई भी नहीं पी सकता। तो उनके पास भी धन बहुत होता है, बहुत सारे धनी लोग होते हैं, बिलियंस मिलियंस डॉलर्स होते हैं, पर किसी के काम नहीं आता। शास्त्रों में कुएं को चिरंजीव कहा गया है, इसकी मिसाल देते हुए कुएं कि हे कुप तुम चिरंजीवो भव, हे कुएं तुम चिरंजीव रहो, तुम्हारे पास पानी की कोई कमी, पानी बहुत कम है। जैसे कुएं के अंदर पानी बहुत कम होता है ना, लेकिन जो भी आए वो आसानी से कुएं में से पानी भर कर पी सकता है। इसलिए कुएं में भले ही पानी कम होता है पर खर्च वो दिल खोल कर करते हैं। जो भी आता है बाकेट से पानी निकालता है और कुएं से अपनी प्यास बुझा के जाता है। पानी थोड़ा है पर सब लोग पी तो सकते हैं ना, और धिक्कार है उस समुद्र के ऊपर जिसके अंदर अथाह समुद्र में जल होता है, और समुद्र को कहते हैं हे समुद्र तुझे धिक्कार है, तुम्हारे जल पर तुम्हारे तट पर कोई प्यासा यदि आए उसको बहुत ज्यादा प्यास लगे, वो मर रहा हो, वो प्राणी रो रो कर भले ही तुमको दो बूंद पानी दे देगा लेकिन तुम्हारा पानी नहीं पी सकता, इतना खारा पानी भला कोई क्या पिएगा। इसी तरह से कुछ धनी लोग होते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है परंतु वो पैसा किसी के काम नहीं आएगा, वो केवल छोड़कर मरने के लिए जमा किया है उन्होंने। इस तरह से उन लोगों की प्रशंसा भले जिनके पास थोड़ा सा धन हो परंतु परोपकार होता रहता है, ये बहुत ही बड़ा लाभ है कि हमारे धन से किसी का कल्याण हो रहा है, किसी शुद्ध भक्त की सेवा हो रही है, मंदिर में सेवा हो रही है। या तो वास्तव में बुद्धिमानी यही है कि जिसके पास धन है वो उपकार के काम में लगा ले, भगवान के प्रचार के काम में लगा ले, नहीं तो धन तो वैसे भी चला जाएगा, या तो वो छोड़ के चला जाएगा या धन तो किसी का हुआ नहीं है। तो एक हिंदी कविता में अत्यंत सुंदर बताते हैं कि पानी भरे नाव में घर में भरे जब धन, दोनों हाथ उन्हीं चाहिए यही सयानो काम। कि जो सयाने लोग होते हैं उनका क्या काम है कि यदि वो कश्ती में जा रहे हो और कश्ती के अंदर पानी भर जाए तो वो क्या करे, दोनों हाथ उन्हीं चाहिए, जल्दी से जैसे भी करके उस पानी को बाहर निकाले। अगर पानी नहीं भर बाहर निकाला, अगर नौका में पानी होगा तो फिर अगर उसको निकालेंगे नहीं तो क्या होगा, नौका डूब जाएगी। उसी तरह जब किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन जमा हो जाए तो दोनों हाथों से शुभ कार्य में लुटाना चाहिए, नहीं तो वो धन ही डुबाएगा। उसी के द्वारा हमारी संतान गलत कार्य करेगी, वही संतान जो अगर धन नहीं होता है तो माता पिता की सेवा करती है, और अगर धन जमा हो जाता है तो केवल टीवी कंप्यूटर और यूट्यूब में ऐसे कार्य करती, ऐसे चित्र देखती है जिससे उनकी काम वासना बढ़ जाती है, शराब पीते हैं, वेश्यागमन करते हैं। ये सब धन का ही तो प्रभाव है, ये सब शुरू होता है उस दिन से जब धन का सही उपयोग नहीं होता। इसीलिए जो विद्वान लोग हैं उन्हें चाहिए कि धन को दोनों हाथों से दान देना चाहिए, जिस तरह से नौका का पानी खत्म करके ही वो नौका को बचाया जा सकता है, उसी तरह यदि धन है तो उसको दान देकर ही हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पर अत्यंत ही सुंदर रीति से सुखदेव गोस्वामी ने जो विरक्त हैं, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया है कि जो भी भगवान की कृपा से मिल जाए वो खा ले, पी ले, पहन ले, किसी भी घर में रह ले, और वास्तव में उसके जीवन का लक्ष्य क्या है कि भगवान का भजन करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे कहते हैं चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षा, कि पहनने के लिए कपड़े ही चाहिए ना, तो फिर सड़क पे पड़े हुए टुकड़ों को ही लपेट लो, इतना ज्यादा कपड़ों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि भूख लगती है तो वृक्षों के फल खाकर जी लो, इतने ज्यादा व्यंजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्यास लगती है तो पानी पीकर जी लो, नदियों का पानी सूख नहीं गया है। भगवान ने ये सारी सुविधाएं पहले से ही बना दी हैं, तो फिर अगर रहना ही है तो घर बनाने की क्या जरूरत है, गुफाओं में जाकर रह लो। और अगर तुम्हें किसी चीज का भय है तो समझो तुम्हें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। जो भगवान सबकी रक्षा करते हैं तो क्या वो अपने भक्त की रक्षा नहीं करेंगे? तो यहाँ पर हमें दोष वृत्ति नहीं देखनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम का श्लोक सामने है, हम तो केवल ट्रांसलेशन करते हैं। कुछ लोग फौरन से हैंड रेस करते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया, क्या हम इस संसार में अच्छे से जीने के लिए, सुविधा प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल ना करें? देखो, भागवतम में एक सिद्धांत बताया गया है। सिद्धांत बताया गया है कि यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो ये भौतिक वस्तुएं आपके और भगवान के बीच में बाधा क्रिएट करेंगी। ये सिद्धांत है कि इन भौतिक वस्तुओं के पीछे जो व्यक्ति भागता जाएगा उसे भगवान प्राप्त कभी नहीं होंगे। अब सिद्धांत पता चल गया, ये स्टैंडर्ड है। इसके बाद जिसको जैसे कॉम्प्रोमाइज करना है, जैसे एडजस्ट करना है, उसकी मर्जी। जो बताना है सुखदेव गोस्वामी वो तो बता रहे हैं कि सिद्धांत यही है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में इतने सारे अर्थ की, इतनी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। ये भार है वास्तव में। इन सब वस्तुओं को कमाने में, उनको मेंटेन करने में, उनको सुरक्षित करने में बहुत बहुत समय समाप्त हो जाता है। हमें मनुष्य जीवन बहुत ही थोड़े समय के लिए मिला है। अगर इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त जमा करने में ही अपने जीवन को समाप्त कर जाएंगे तो कब भगवान की भक्ति करेंगे? तो आज के मनुष्य का जीवन तो केवल भौतिक वस्तुएं ही जमा करने में गुजर जाता है। पूरा जीवन ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसे करते 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 एक दिन मर जाता है, उसको भजन करने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जीवन बिल्कुल खाली होना चाहिए कृष्ण के भजन के लिए। सुखदेव गोस्वामी जीवन का बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं कि इन वस्तुओं में जिनके पीछे मनुष्य अपने जीवन को वेस्ट कर रहा है, इन वस्तुओं में कोई भी सुख नहीं है। सुख के लिए ही तो जीव ये सब कर रहा है ना। सुख तो केवल भगवान के नाम में है, भगवान की कथाओं में है। बाकी तो जो भी वस्तुएं हैं, कालीन सर्वत्र गभीर रहमसा, वो सब समय के साथ हमें मिल जाएंगी। किस तरह? तल्लभ्यते दुख वदन्यता सुखम। जिस तरह से दुख हमारे किसी भी प्रयास के बगैर हमें प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे लिए ही होते हैं, तो सुख क्यों नहीं मिलेंगे? जो हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारे ऐसे के सुख भी हमें स्वतः आके प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जो वास्तव में बुद्धिमान है वो किस लिए कार्य करता है? यस्यैव हेतु प्रियतेव को विदु न भ्रमताम उपर्यदा। जो वास्तव में बुद्धिमान है वो उस वस्तु की खोज के लिए प्रयत्न करता है जो न लभ्यते यत भ्रमताम उपर्यदा, जो ऊपर से नीचे तक कहीं पर प्राप्त नहीं होती है, वो केवल इस मनुष्य जन्म में पृथ्वी लोक पर ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए अपने मनुष्य जीवन को हमें केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्तों का संग करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।